नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और नियामक अधिकारों से उपभोक्ता अधिकारों के लिए उचित तौर तरीकों को प्रोत्साहन देने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। मौसम विभाग ने महानिदेशक ने कहा है कि मौसम का सटीक पूर्वानुमान पिछले 10 वर्षों में 40-50% तक बढ़ गया है और वडोदरा में महिला क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नीति आयोग के वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श में भाग लिया। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बीवीआर सुब्रमण्यम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय बजट वर्ष 2025-26 के लिए बजट पूर्व परामर्श की शुरुआत इस महीने की 6 तारीख को हुई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों, किसान संघों, अर्थशास्त्रियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के साथ परामर्श किया। केंद्रीय वित्त मंत्री आगामी 1 फरवरी को लोकसभा में वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर सकती है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के साथ 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने NCRB के अंतर्गत संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली ICJS 2.0 में नए आपराधिक कानूनों के पूर्ण कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करने को कहा है। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग अनुदान के तहत उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के लिए 1598 करोड़ रुपए से अधिक की, आंध्र प्रदेश के लिए 446 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयकों पर संयुक्त सदस्यीय समिति की पहली बैठक अगले महीने की 8 तारीख को होगी। 39 सदस्यीय समिति में लोकसभा के 27 और राज्यसभा के 12 सदस्य शामिल होंगे। समिति अगले संसद सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में स्मार्टफोन का निर्यात मूल्य 1,00,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा है कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI के कारण देश में स्मार्टफोन निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 45% की वृद्धि हुई। आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाने वाला ये दिवस प्रत्येक उपभोक्ता के आधिकारिक और उत्तरदायित्व के महत्व को उजागर करता है। इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ था। इस वर्ष का विषय है वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर केंद्रीय उपभोक्ता कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज वर्चुअल माध्यम से कई पहलों की शुरुआत की। इनका उद्देश्य ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर डार्क पैटर्न की पहचान करना और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना है। श्री जोशी ने उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर डार्क पैटर्न की पहचान करने के लिए जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड शुरू किया है। जागो ग्राहक जागो ऐप उपभोक्ता की ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान सभी URL के बारे में आवश्यक ई कॉमर्स जानकारी प्रदान करेगा और अनुसुरक्षित URL के बारे में सचेत करेगा। श्री प्रहलाद जोशी ने उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा और उन्हें सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। श्री जोशी ने सभी हितधारकों, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, नागरिक समाज और नियामक अधिकारियों से उचित तौर तरीके और उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर उपभोक्ताओं की अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए बिहार में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार ने आकाशवाणी से बातचीत में उपभोक्ताओं से किसी भी सामान की खरीद करने पर रसीद लेने की अपील की है। डॉक्टर कुमार ने उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की शिकायत और सहायता के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की सलाह दी है। नववर्ष और क्रिसमस से पहले हिमाचल प्रदेश के शिमला और अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश से सभी पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार हो गया है। शिमला, कुफरी, नारकंडा, मनाली और डलहौजी जैसे जगहों पर पर्यटक बर्फबारी का भरपूर आनंद ले रहे हैं। इधर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में आज रात क्रिसमस समारोह के लिए उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। ईटानगर की सड़कें रंग बिरंगी रोशनी और क्रिसमस ट्री से सजाई गई हैं और चर्च तथा घरों से कैरोल्स की मधुर धुनों की गूंज आने लगी है। सेंट मैरी चर्च सहित पूरे शहर के चर्च खूबसूरती से सजे हुए हैं और मध्यरात्रि के सामूहिक प्रार्थना समारोह के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। सेंट मैरी चर्च के फादर सनी मिंच ने बताया है कि स्वयंसेवक इस उत्सव के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चर्च ने उत्सव के पहले विभिन्न प्रतियोगिताओं, दैनिक प्रार्थनाओं आदि का आयोजन किया है। फादर मिंच ने बताया है कि चर्च ने कल सुबह के सामूहिक प्रार्थना समारोह, भोजन तथा अन्य कार्यक्रमों की भी व्यवस्था की हुई है। दुबई में भी क्रिसमस की पूर्व संध्या पर शहर के प्रतिष्ठित स्थानों और बाजारों में रौनक बढ़ गई है। मौसम विभाग का सटीक पूर्वानुमान पिछले 10 वर्षों में 40 से 50 प्रतिशत तक बढ़ गई है। संवाददाताओं से बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि मूसलाधार वर्षा का सटीक पूर्वानुमान भी 60% से बढ़कर 80% हो गया है। उन्होंने मौसम विभाग के बुनियादी ढांचे के विकास का भी उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा को गैरकानूनी संगठन घोषित करने के लिए पर्याप्त कारणों की जांच के वास्ते गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम न्यायाधिकरण का गठन किया है। न्यायाधिकरण इसके गुटों, शाखाओं और अग्रणी संगठनों की भी जांच करेगी। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध प्रवास में शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस आयुक्त अंकित चौहान ने कहा है कि इस मामले में शामिल 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें 5 बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है। पुलिस उपायुक्त ने कहा है कि आरोपियों ने फर्जी वेबसाइट के माध्यम से नकली दस्तावेज तैयार किए जिससे बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से देश में रह सके। तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन संध्या थिएटर भगदड़ मामले में पूछताछ के लिए आज पुलिस के सामने पेश हुए। उन्हें कल एक नोटिस जारी कर जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया था। ये नोटिस उन खबरों के बीच आया है कि पुलिस उनकी अंतिम जमानत रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय जाने पर विचार कर रही है। अर्जुन को 13 दिसम्बर को गिरफ्तार किया गया था। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज गुजरात के वडोदरा में माई भारत गुड गवर्नेंस पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 8 किलोमीटर की ये यात्रा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश जाएंगे। वे खजुराहो में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये देश की पहली नदी जोड़ो यात्रा होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध फिल्म निर्माता श्याम बनेगल के निधन पर शोक जताया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक संदेश में श्याम बनेगल की फिल्मों में कहानी पेश करने के तरीकों की प्रशंसा की। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी श्याम बनेगल के निधन पर दुख व्यक्त किया। और महिला क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा एक दिवसीय मैच वडोदरा में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक 46 ओवर में 3 विकेट खोकर 315 रन बना लिए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और नियामक अधिकारियों को से उपभोक्ता अधिकारों के लिए उचित तौर तरीके को प्रोत्साहन देने के वास्ते मिलकर काम करने का आह्वान किया और वडोदरा में महिला क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच मैच जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।